क्या तेरे दिमाग में ऐसी कोई जगह है जहां भाभी जा सकती हैं? नितिन के इस सवाल पर कायरव गहरी सोच में खो गया। अगर वो अपनी मर्जी से गई हैं तो राजस्थान में जयपुर साइड कहीं गई होगी, इसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसे घूमने का शौक है। लेकिन वो मुंबई से बाहर कभी निकली नहीं। हमारे हनीमून पर हम जयपुर गए थे और पूरा राजस्थान घुमाया था मैंने। वहां से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और इनाया को वो जगह पसंद भी बहुत आई थी, तो चांसेस हैं कि वो वहां गई हो। फिर तो हमें भाभी को वहां ढूंढना चाहिए। वहां भी अगर हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह रखेंगे तो इनाया को ढूंढना मुश्किल होगा। अगर हमें जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना है तो एक साथ उस हर जगह नजर रखनी होगी जहां उसके होने की 1% भी पॉसिबिलिटी है। मैं समझ गया। कुछ देर और बातों के बाद नितिन चला गया। कायरव 4 महीने बाद लौटा था तो उसके लिए भी काफी काम पेंडिंग था। इनाया पर से ध्यान हटाने के लिए वो एक बार काम में डूबा तो होश सीधे रात को आया, वो भी तब जब रात के 9 बजने पर नितिन उसे घर जाने के लिए बोलने आया। तू चला जा, मेरा थोड़ा काम रह गया है, उसे कंप्लीट करके चला जाऊंगा। और कितना काम करेगा यार, सुबह से देख रहा हूँ जब से आया है बस काम में डूबा हुआ है, लंच तक स्किप कर दिया। शक्ल देख अपनी कैसे उतर गई है, भाभी की एब्सेंस में तूने खुद का क्या हाल बनाया हुआ है। देखकर लगता है जैसे सालों से बीमार है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। देखकर लगता है जैसे सदियों से सोया ही नहीं, कितना थका थका सा लग रहा है। और आंखें देख कितनी लाल हो गई हैं, थोड़ा उन्हें भी आराम दे, अपना ख्याल रख। अगर तू खुद को ऐसे टॉर्चर करेगा तो भाभी को कैसे ढूंढेगा। गुस्सा भी था, फिक्र भी और शिकायत भी। नितिन की कही हर बात सच थी, लेकिन कायरव का चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैं ठीक हूँ, तुझे बेवजह मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं क्यों बेकार में तेरी फिक्र करूंगा, हक ही क्या है मेरा तुझ पर। मैं तो बस तेरे ऑफिस में काम करने वाला एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ जिसकी ड्यूटी है तेरे ऑर्डर्स चुपचाप फॉलो करना। नितिन ने नाराजगी से गालों को फुलाया, वो गुस्सा जाहिर करने से भी पीछे नहीं रहा था। नितिन, मेरा वो मतलब नहीं था, तू बेकार में ही इतनी सेंटी हो रहा है। मुझे तेरा कोई मतलब वतलब नहीं जानना, तू अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रहा है और अब से जब तक भाभी वापस नहीं आ जाती मैं तेरे साथ ही रहने वाला हूँ। नितिन का फैसला सुनकर कायरव चौंक गया। नितिन, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है, तुझे मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं। मेरे पास देखने के लिए आंखें भी हैं और समझने के लिए दिमाग भी। मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अकेले रह रहकर तो बिल्कुल दीवाना सा हो गया है, खुद का तुझे कोई ख्याल ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो भाभी मिले ना मिले तो जरूर हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, शायद पागल ही हो जाए, क्योंकि जिस तरह तू अपने माइंड और बॉडी को टॉर्चर कर रहा है उसे जरा भी रेस्ट नहीं देता, वो ज्यादा वक्त तक ऐसे चल ही नहीं सकता। मैं ठीक। कायरव बात पूरी भी नहीं कर सका कि नितिन ने बीच में ही उसे टोक दिया, तीखी निगाहों से उसे घूरा और रोषपूर्ण अंदाज में बोला, तू कितना ठीक है ये मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसलिए अब ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। लैपटॉप शट डाउन कर और चल मेरे साथ, तू नहीं मानेगा ना। कायरव खींच गया और भौं से कोर कर उसे घूरा, लेकिन नितिन जरा भी नहीं घबराया, सीना तान कर उसके सामने खड़ा रहा और कॉन्फिडेंस से बोला, बिल्कुल नहीं मानूंगा, और अगर अब भी तू नहीं माना, काम बंद करके मेरे साथ नहीं चला, खुद का ख्याल रखना शुरू नहीं किया तो तुझे भी किडनैप करवाकर एक रूम में बंद कर दूंगा। कायरव ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा। नितिन ने गहरी सांस छोड़ी और उसके सामने आकर बैठ गया। कायरव, क्या कर रहा है तू, क्या मिलेगा तुझे खुद को ऐसे टॉर्चर करके, क्यों कर रहा है तू खुद से साथ ऐसा। मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ पहुंचाने से भाभी मिल तो नहीं जाएंगी, ढूंढ रहे हैं ना हम उन्हें, भगवान ने चाहा और किस्मत ने साथ दिया तो जल्दी ही मिल भी जाएंगी। लेकिन अगर तू खुद के साथ ऐसा करेगा, अपना ही बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगा, तो तू भाभी को कैसे ढूंढ पाएगा। क्या पता वो तेरा वेट कर रही हो, उनके लिए अभी तुझे खुद को संभालना होगा, स्ट्रांग बनकर इस डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना होगा। नितिन अब एक फ्रेंड की तरह प्यार से उसे समझा रहा था। कायरव के होंठ कसमसाए, शायद वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोलते बोलते रुक गया। उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर खड़ा हो गया। चल। नितिन कुछ पल परेशान सा उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाया और कायरव के साथ ऑफिस से निकल गया। दोनों साथ ही पार्किंग में पहुंचे जहां उनकी कार भी एक साथ ही खड़ी थी। मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। नितिन की बात सुनकर कायरव ने पलट कर उसे देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, खुद से अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुझे बेवजह मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन इतने दिनों तक तू अकेला रहा है, कुछ दिन मैं तेरे साथ ही रुक जाता हूँ, तुझे कंपनी मिल जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इनाया और उसकी यादें ही काफी हैं, मेरे और उसके बीच कोई आई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तू घर जा। नितिन ने कुछ बोलना चाहा लेकिन कायरव के सर्द एक्सप्रेशन देखकर चुप ही रह गया। कायरव ने अपनी कार स्टार्ट की और धूल उड़ाता हुआ वहां निकल गया। नितिन अभी भी वहीं खड़ा परेशान निगाहों से उसकी जाती हुई कार को देख रहा था। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो ये भी पता होगा कि इस वक्त भाभी कहाँ है, प्लीज उन्हें सेफ रखना और कुछ भी करके जल्दी से जल्दी उन्हें हमसे मिलवा देना। अगर भाभी नहीं मिली तो ये लड़का उनकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कहीं ये भी अपनी जान ही ना दे दे। प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए हमारी, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे यार की जिंदगी, उसकी खुशियाँ वापस उसके पास पहुँच जाए।
नितिन ने सिर उठाकर चांद तारों से सजी आकाश को देखा और आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करने लगा। कायरव भावहीन सा ड्राइव कर रहा था। मन में इनाया का ख्याल था, जहन में कई पुरानी यादें घूम रही थीं, दिल बेचैन था और दिमाग जैसे उन बीते लम्हों से बाहर आकर इस रियलिटी का सामना ही नहीं करना चाहता था। वो वक्त जब ऑफिस से वो होटल जाया करता था और वहां से इनाया को पिक करके दोनों साथ में घर जाते थे। इनाया की खिलखिलाहट, उसका मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा, दिलकश अदाएं, वो नाराजगी जताने का अंदाज, प्यारी प्यारी बातें, उसकी शरारतें, मासूम शिकायतें, गुस्से से लाल नाक, उसका प्यार और उसके साथ बिताए वो मोहब्बत से भरे हसीन लम्हे, सब कायरव की आंखों के सामने घूम रहा था। कायरव के होंठों पर जानदार मुस्कुराहट ने अपना कब्जा जमा लिया। वो उन लम्हों में खोया एक बार फिर इनाया को महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसका सामना आज की कड़वी हकीकत से हो गया। उसकी सूनी वीरान जिंदगी जैसे उसे सच्चाई का आईना दिखा गई थी। दूर खड़ी किस्मत भी कहीं उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। होंठों पर आई मुस्कुराहट भी जैसे अब उसे चिढ़ा रही थी। कायरव ने कार साइड में रोकी और सीट से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कायरव के फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन मौजूद थे। काफी वक्त गुजर गया। कायरव कार साइड में रोके ऐसे ही आंखें बंद किए शांत सा बैठा रहा। फिर उसने ठंडी आह भरी, अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनों की मध्यम आवाज भी जैसे इनाया को पुकार रही थी। कायरव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे और तड़पते दिल से धीमी सी आवाज निकली, एना कहाँ हो तुम? जहां भी हो अब प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना ये जिंदगी काटे नहीं कटती। दिल को एक लम्हे के लिए भी कहीं चैन नहीं आता। वक्त गुजरता ही नहीं। अब ये दूरियों की तड़प मुझसे और नहीं सही जाती। वापस आ जाओ, लौट आओ वापस मेरे पास। आई प्रॉमिस यू, अब तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। जहां जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। प्लीज वापस आ जाओ।
कायरव ने गहरी सांस छोड़ी और कार वापस स्टार्ट कर दी। अभी कुछ आगे ही आया था कि उसके चेहरे पर तेज रोशनी के साथ कानों में हॉर्न की तीखी आवाज पड़ी और उसके कान सुन हो गए। उसने चौंकते हुए सिर घुमाया। उसके राइट साइड से एक तेज रफ्तार ट्रक फुल स्पीड में उसके तरफ बढ़ रहा था। शायद उसका ब्रेक खराब था। ड्राइवर लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था, लेकिन कायरव का दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया था। वो कुछ देर अपलक उस ट्रक को स्पीड में अपने तरफ बढ़ते देखता रहा, फिर आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के आगे इनाया का खूबसूरत सा चेहरा आया और होंठों पर कातिलाना मुस्कान बिखर गई। अगले ही पल तेज झटका लगा और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। सिर से खून का फवारा फूटा जो सड़क को खूनी रंग में रंग गया। टू बी कंटिन्यूड।